राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गिरिधारे राधा गिरिधारे राधे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बालदेवा जय सुभद्रा। गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौर हरि 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 बोल जय गौर। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्ते श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय 19 श्लोक संख्या 4 तस्याः उद्धरण उपायम् वस्तः सामि विचिन्तयन् व्यदधात् तीर्थम् उद्धृत्य विशान अग्रेण रोधसि तस्या उद्धरणोपायम् तस्या उद्धरणोपायम् वत्सः कामि विचिन्तयन् वत्सः कामि विचिन्तयन् व्यदधात्तीर्थयन् उद्धृत्य व्यध्यतातीर्थम् उद्धृत्य विषानाङ्ग्रेण रोधसि विषाणाङ्ग्रेण रोधसि उद्धरणोपायम् हस्तकामी विचिन्तयन् कीर्तमुद्धृत्य रोधसि उद्धरणोपायम् हस्तकामि विचिन्तयन् तीर्थमुदत्य निशानाज्ञेन रोधसि अस्यानुत्तरोपायम् कामि विचिन्तयन् तस्या उद्धरणोपायम् तस्या कामि विचिन्तयन् रक्तरीतमुद्धृत्य निशानाद्येन रोधसि तस्याद्धरणोपायम् हस्ता कामि विचिन्तयन् रक्तदीतम् उद्धृत्य निशानाद्येन रोधसि तस्याद्धरणोपायम् हस्तकामि विचिन्तयन् यदत्ततीतमुद्धृत्य विषाणाग्नेन रोधसि तस्याद्धरणोपायम् मत्सकामि विचिन्तयन् व्यर्थमुद्धृत्य निशानाग्रेण रोधसि तस्या उद्धरणोपायम् ಸ್ಯ ಕಾಮೇ ವಿಚಿಂತಯನ್. ವಿಷಾದ್ಹಂಸೇನ ಬೋಧ. ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇ ತಸ್ಯ ಬಕರಿ ಕಾ ಉದ್ಧರಣ ಉಪಾಯಂ ಕುವೇ ಸೆ ಉದ್ಧಾರ ಕಾ ವಾಯ್ ಬಸ್ತಃ ಬಕರೆನೆ ಕಾಮಿ ವಿಷಯಿ ವಿಚಿಂತಯನ್ ಯೋಜನಾ ಬನಾತೆ ಹುವೆ ವೇದತ್ತಾ ಸಂಪನ್ನ ಕಿಯಾ ತೀರ್ಥಂ ಬಾಹರ್ ನಿಕಾಲ್ನೆ ಕಾ ಉಪಾಯ ಉದ್ಧೃತ್ಯ ಪೃಥ್ವಿ ಖೋದ್ಕರ್ ವಿಷಾಣ ಅಗ್ನೇನ ಪೈನೆ ಸಿಂಗೋಸೆ ರೋಧಸಿ ಕುವೇ ಕೀ ಘಾಟ್ ಪರ್. ಅನುವಾದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಜೊಯೆಂಗೆ ಸೇಸಿ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೆ ದ್ವಾರ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಜಯ. ಕುವೇ ಸೆ ಬಾಹರ್ ನಿಕಲ್ನೆ ಕೀ ಯೋಜನಾ ಬನಾಕರ್ ವಿಷಯ ಬಕರೆ ನೇ ಅಪ್ನೆ ತೀಖೆ ಸಿಂಹೋ ಸೆ ಕುವೇ ಕೀ ಘಾಟ್ ಕೀ ಮಿಟ್ಟಿ ಖೋದ್ ಡಾಲಿ ಜಿಸ್ಸೆ ವಹ ಬಕರಿ ಕುವೇ ಸೆ ಬಾಹರ್ ಸರಳತಾ ಸೆ ನಿಕಲ್ ಸಕಿ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇಸ್ ಸಂಸಾರ ಮೇ ಸುಖಪೂರ್ವಕ ರಹನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಕಾಸ ಆವಾಸ ತಥಾ ಅನ್ಯ ವಸ್ತುವೋ ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕಾ ಕಾರಣ ಸ್ತ್ರೀ ಕೆ ಪ್ರತಿ ಆಕರ್ಷಣ ಹೇ. ಬಕರಿ ಕೋ ಬಾಹರ್ ನಿಕಾಲ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಮಿಟ್ಟಿ ಖೋದನಾ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರಮ ಸಾಧಕ ಕರ್ಮ ಥಾ. ಕಿಂತು ಬಕರಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಬಕರೆ ಕೋ ಯಹ ಶ್ರಮ ಕರ್ನಾ ಪಡಾ. ಅಹೋ ಗೃಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುತಾಪ್ತ ವಿತ್ತೇ ಜನಸ್ಯ ಮೋಹೋಯಂ ಅಹಂ ಮಮೇತಿ. ನರ್ ತಥಾ ನಾರಿ ಕೆ ಸಂಯೋಗ ಸೆ ಅಚ್ಚ ಮಕಾನ್ ಅಚ್ಚ ವೇತನ್ ಸಮಸ್ ಸಂತಾನ್ ತಥಾ ಮಿತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ್ ಮಿಲ್ತಾ ಹೈ. ಇಸ್ ತರಹ ಮನುಷ್ಯ ಇಸ್ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ ಮೇ ಫಸ್ ಜಾತಾ ಹೈ. ಉಪಜ್ಞಾನ ವಿರಾಂದಸ್ತಿ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾಮೈಹಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀ ಗುರೌ ಶ್ರೀಯುತ ಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀ ಗುರುನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗರ ಜಾತಂ ಸಹಗಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸದೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನ ಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾನ್ ಸಹಗಣ ಲಲಿತಾ ಶಿವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧೌ ದೀನಬಂಧೌ ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾ ಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ನಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ವಾಣೀ ಹರಿಪ್ರಿಯ ವಾಂಚಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೈವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ್ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ. हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। आज तुलसी शालिग्राम विवाह है, श्री कृष्ण रथ यात्रा है और साथ साथ में श्रीपाद निम्बारकाचार्य का आविर्भाव दिवस है। तो भागवतम के इस श्लोक के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे और इसके बाद जो आज के कुछ विषय है इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। अभी ये आती राजा पछता रहा है, ये पछताव जो है ये सत्वगुण का लक्षण है। मैंने जो पाप किया है पहले या अभी तक जो भी जीवन में पाप किया है उसको स्मरण करते हुए पछताना, मैंने क्या बर्बाद कर दिया मेरे जीवन को, ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है शरणागति का। इसलिए श्री भक्तिनोद ठाकुर अपने शरणागति की भजन में आत्मनिवेदन की प्रार्थनाओं में क्या कहते हैं कि अमार जीवन सदा पापे रतो नहीं पुण्य रोलेश, मैं पूरा जीवन केवल पाप ही पाप किया है, एक पुण्य कार्य भी नहीं किया है। तो इस प्रकार की जो मनोभावना है भगवान की शरणागति को प्राप्त करने में बहुत सहयोग देती है। अभी भगवान का भजन किया उन्होंने अपनी पत्नी के साथ और साथ साथ में भोग भी रहे थे, ये विचार के साथ में कि इसको कब त्याग करूं। जब उनका भगवान का भजन परिपक्व हुआ तब ययाति महाराज के मन में एकदम बिल्कुल विरक्ति आ गया। जब विरक्ति आया तो उन्होंने पछताया। तो ये पछताव जो है विरक्ति को मजबूत करने वाला चीज होता है। जवान लोग को ये भी विरक्त हो गया संसार से, उसको ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि मैंने क्या क्या पाप किया, यानी उसको स्मरण करते हुए पछताना चाहिए मैंने जीवन बर्बाद कर दिया। ये वैराग्य को और दृढ़ करने वाला है। तो वैसे वैराग्य उत्पन्न हो गया है लेकिन फिर भी ये याति अपनी पत्नी देवयानी को कहते हैं देखो मैंने अपना जीवन बर्बाद किया है। तो इसके विषय में मैं एक व्यक्ति की कहानी सुना, अस्तित्व कहानी उसी का था, उसी परिवार का था, देवयानी का था, उनका था, शर्मिष्ठा का था, इस संसार का था। लेकिन उन्होंने तुलना किया एक कहानी का, एक बकरा का और बकरी का कहानी। जैसे मान लो कोई मूर्खता पूर्वक व्यवहार करता है तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बकरा बोल देता है। या दूसरे शब्दों में कोई मान लो किसी ने किसी को चीटिंग कर दिया या उसको धोखा दिया तो क्या बोलते हैं, उसको बकरा बनाया है। तो किस प्रकार एक बकरी ने बकरे को बकरा बनाया। तो इसका पूरा वर्णन है। अभी बाद में पूरा बकरा बनने के बाद सोचा, रे रे मेरा सोई बकरे जैसा हो गया, मैं राजा था मैं बकरा कैसे बन गया। यही स्टोरी है, या तो यही पछता रहे कि मैं कहां का क्या राजा हूं, कितना शक्तिशाली हूं, लेकिन एक बकरी ने मुझे बकरा बना दिया। तो देवयानी को कह रहे तुम बकरी हो मैं बकरा हूं। और देवयानी को भी विरक्ति आ गया सुन के। तो ये भक्ति का महिमा है, ये भक्ति का महिमा ऐसा है कि भक्ति से उत्पन्न हुआ जो वैराग्य है वो स्थायी होता है और इतना स्थायी होता है कि फिर वापस वो भौतिक जगत में नहीं जाता है अगर वो भक्ति को अच्छा करे तो। इसलिए श्रीपाद राम यमुनाचार्य भी कहते हैं कि यदवधि मम चेत कृष्ण पदारविंदे नव नव धावन्य उदितम रंतमासी तदवधि बता नारी संगमे स्वरण्य मामे भवति मुख विकाह सृष्टि वरम च। तो यमुनाचार्य कहते जब मैं भगवान की भक्ति में रमण कर रहा हूँ, भगवान की भक्ति में मेरा मन हमेशा नव नव धावन्य उदितम रंतमासी रंतमासी अनेकों अनेकों भगवान के दिव्य लीलाओं का स्मरण की वजह से मुझे आनंद का अनुभव हो रहा है। तो उस समय मैं अगर कोई विचार आता है
इंद्र जी का विचार आता है तो वो उस विचार के ऊपर थूक देता हूं। तो ये यमुनाचार्य कहते हैं, यमुनाचार्य स्तोत्रत्व में। तो इधर भी ये जो भगवान की भक्ति की प्रभाव से यहां की जिस देवयानी को भोगाता उन्हीं देवयानी को कहता है याति, याति कहते हैं कि मैं एक बकरा बन गया तो मेरा जीवन इस प्रकार भी देखो कितना दुर्भाग्यमय जीवन है मेरा, कितना भयात्मक जीवन बिताया मैंने, अभी मुझे वो करना नहीं है, आई डोंट वांट टू डू दैट। तो ये पछतावा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि रजोगुण हर व्यक्ति के अंदर है, रजोगुण की वजह से इंद्रिय पृथ्वी के प्रति आकर्षण रहता है। तो लेकिन वो रजोगुण के अंदर रहते हुए, क्योंकि रजोगुण तो है स्वभाव के अनुसार कार्य करना होगा, तो रजोगुण का स्वभाव क्या है कि कार्य करना, इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करना। तो उस समय अगर भगवान का भक्ति को भी स्वीकार करता है और भजन करते भगवान का प्रार्थना करता है तीव्रता से, तो ये जो अयाति जिस प्रकार जिस अवस्था में पहुंचा वो अवस्था आज नहीं तो कल पहुंचेगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि तुरंत विरक्त होना असंभव है, मुश्किल है, या होना कठिन भी है और करना भी नहीं चाहिए। जैसे इसी बार मैंने एक उदाहरण दिया था, एक कपड़ा उड़ के जब एक कांटों की झाड़ के ऊपर गिर जाता है, अगर उस कांटे को उस कपड़े को निकाल दिया जाए जल्दी से या खटाक से निकाल दिया जाए तो क्या होगा, फट जाता है। इसलिए भक्ति भी करो भोग भी करो, धीरे धीरे से क्या होगा, भक्ति के प्रभाव से भोग की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगा, एक प्रवृत्ति मार्ग है। तो ये याद ही जो है प्रवृत्ति मार्ग के आचार्य है, लेकिन नारद जी निवृत्ति मार्ग के आचार्य है। नारद जी क्या कहते हैं कि भजन नपक्वोत त्यक्त्वा स्वधर्मान चरणाम्बुजम हरे भजन नपक्वोत पतेत ततो यदि यत्र कावाभ्यारम अमुष्विकिम कुवर्था आप तो भजताम स्वधर्म था। नारद जी क्या कहते हैं, कुछ भी हो जाए छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो, मान लो कि कुछ अपक्व अवस्था में तुमने भक्ति कर ली, अपक्व अवस्था में भक्ति होने की वजह से तुम्हारा वैराग्य कोमल होने की वजह से अगर गिर भी गया उसमें कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है, क्योंकि भक्ति तो किया ना कम से कम, ये नारद जी का विचार है। तो इससे एक निवृत्ति मार्ग है प्रवृत्ति मार्ग है, इधर ययाति जो है वो प्रवृत्ति मार्ग के आचार्य है। अभी उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ, वैराग्य वो अपने बकरी का कहानी, बकरा बकरी का कहानी बताते हैं। तो उन्हें कहा कि बकरा जा रहा था जंगल में, तो रास्ते में उन्हें कुआं देखा पानी पीने के लिए आया था, तो कुएं में क्या देखा, एक बकरी को देखा, तो बहुत डरी हुई थी बकरी। तो ये जंगल जो है वो संसार है, और ये बकरा जो है ये याति है या पुरुष है, बकरी जो है वो स्त्री है, और ये बकरा ये याति ये जो प्यास बुझाने के लिए आए, ये जो प्यास बुझाने की जो प्रवृत्ति इंद्र तृप्ति प्राप्त करने की प्रवृत्ति, इंद्रिय भोग की लालसा है, जब वो आया तो उन्होंने क्या देखा, उस बकरी को कुएं में देख के तो उनको बड़ी दया आई। वो दया की वजह से उन्होंने क्या किया, उस कुएं को खोदना शुरू किया, या कुएं के तट पे इस श्लोक में क्या लिखा है, रोधसी, रोधसी का अर्थ है कि जो कुएं का जो तट होता है उधर से अपने सींग से खोदना शुरू किया। देखिए कितना कुआं कितना गहरा रहता है, बहुत गहरा रहता है, अगर जो कुएं पड़ा हुआ है तो उसको उठाना मतलब क्या है, आपको पूरा एक हिस्सा बनाना पड़ेगा, कुएं के तट को खोदते 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 पूरा उसको एक रोड जैसा बनाना पड़ेगा, तब वो बाहर निकल सकता है, नहीं तो कुएं से ऊपर नहीं निकल सकता है बकरी। तो ऐसा खुदाई करना शुरू अपने सिंह से, प्रभुपाद जी लिखते हैं कितना मेहनत का बात है, देखो एक छोटी सी आशा थी उनके मन में और उसको पूर्ण करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा। इससे श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि अट्रैक्शन फॉर वुमेन इज द इम्पेटस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आजकल जो भी आर्थिक प्रगति हो रहा है, सच में हो नहीं रहा है, लेकिन जो तथाकथित हो रहा है, जो इतने बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे, मकाने बन रहे, सब डेवलपमेंट हो रहा है, ये सब क्या है, ये सब केवल स्त्री के प्रति आकर्षण की वजह से है। एक बार प्रभुपाद जी सत्स्वरूप महाराज, उस समय ब्रह्मचारी थे, सत्स्वरूप दास गोस्वामी सतसुरु महाराज, सतसुरु दास, तो उनके साथ किसी से मिलने के लिए जा रहे थे। अमेरिका में बड़ा ऑफिस का बिल्डिंग था, क्योंकि बड़े ऊंचे माले में किसी से मिलने जा रहा था। तो जब बड़ा ऑफिस का बिल्डिंग है, प्रभुपाद जी अंदर गए सतसुरु दास के साथ में। प्रभुपाद ने वो बिल्डिंग देखा, उधर लिफ्ट था, बहुत सारे लोग थे, आ रहे थे जा रहे थे। फिर प्रभुपाद ने देखा ये दिस इज ऑल लक। तो सतसुरु दास ने पूछा, प्रभुपाद जी दिस आर ऑफिस बिल्डिंग, ये सब तो ऑफिस बिल्डिंग है, तो इधर तो ऐसा कोई कामुक चित्र तो है ही नहीं, आप दिस इज ऑल लक क्यों बोल रहे हो, ये सब काम है करके क्यों बोल रहे हो। तो प्रभुपाद ने कहा वाई आर दे वर्किंग सो हार्ड, प्रभुपाद ने पूछा कि ये लोग इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे एक ही है, एक ही है कि मैं दूसरे को या पुरुष जो है स्त्री को आकर्षित करना चाहता है, स्त्री जो है पुरुष को आकर्षित करना चाहती है, केवल इस आकर्षण इन दोनों के बीच में वही ये सारा भौतिक जगत का प्रगति का कारण। तो प्रगति के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बोले प्रगति तो हो रहा है ना, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो प्रगति के पीछे कितना मेहनत है। तो ये जितने भी मेहनत हो रहा है इस जगत में, कोई भी क्रिया हो रहा है, कार्य हो रहा है, वो केवल इन दोनों के बीच में आकर्षण जो है उसी की वजह से हो रहा है। हर लड़का सोचता है कि मैं काम करूं, क्यों काम करना चाहता है, क्योंकि उनके मन में काम वासना है, काम है, उसी के प्रति आकर्षण है। अगर मान लीजिए इस जगत में कोई स्त्री है नहीं, एक जगह मैंने सुना था, तो जितने पुरुष है वो कुछ नहीं करेंगे, पेड़ के नीचे कॉपिन बन के बैठेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, उठेंगे भी नहीं, तो जो मिलता है उससे बैठ के आराम से बैठ जाएंगे। उसको बोलेंगे थोड़ा सा उधर जाके कुटिया बनाना, क्या जरूरत है। तो जो भी कार्य करता है पुरुष, केवल बच्चे से लेके बच्चों को सिखाया जाता है बेटा अच्छा पढ़ाई करो, तो बच्चा पूछता है क्यों मम्मी, देखो अच्छा पढ़ाई करोगे तो अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छा नौकरी मिलेगा अच्छा कमाओगे, अच्छा कमाओगे तुमको अच्छा स्त्री मिलेगी, तब वो जोड़ेगा फिर वापस एक्टिवेट हो जाता है, चलो मैं पढ़ाई करता हूं। तो प्रत्येक कार्य कोई भी क्रिया, नहीं तो सारे जितने भी लोग हैं सब आलसी हो जाएंगे। ये सारे पुरुषों को भगाने के पीछे स्त्री का हाथ होता है, नहीं तो कोई नहीं भागता, नहीं तो ऐसे बैठा रहेगा। अगर उसको मान ले खाने के लिए कुछ भी नहीं है, वो खाने को प्राप्त आहार प्राप्त करने के लिए भी मेहनत नहीं करेगा, क्या देना कल देखने। लेकिन अगर उनको थोड़ा सा भी अगर ऐसा मन में है मुझे स्त्री चाहिए, तो उसके लिए भागवत में कहा गया है, श्लोक प्रभुपाद जी श्लोक का कोट करते हैं, अहो गृह क्षेत्र सताप्ति वित्तये जनस्य मोहयम अहम ममेति, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है जिसके अंदर कहा गया है गृह सुता क्षेत्र सुता आप्त वित्तये, गृह सबसे पहला घर चाहिए, बाकी सब चीज की चाहे छोड़ कितना प्लानिंग करना पड़ता है। मान लो कोई ब्रह्मचारी है, उसको कल कहीं जाना है, तो ऐसे टिकट लेके जनरल कमांड में बैठ के चिंगल जाएगा। अगर उनका परिवार है तो कितना हंगामा करना पड़ता है, वो करो ये करो बहुत हंगामा। तो जो क्रिया है इस जगत में वो कार्य केवल उसके पीछे कौन है, हाथ पीछे किसका हाथ है, स्त्री का हाथ है। इसलिए स्त्री को स्त्री कहा गया है, क्यों, इस तरह जो विस्तार करने में एक्सपैंड एक्सपर्ट है, पुरुष का भौतिक संसार को एक्सपैंड करने में एक्सपर्ट है। सबसे पहला क्या है, घर चाहिए, तो बाद में क्षेत्र, नहीं मुझे और भी कुछ क्षेत्र चाहिए जहां मैं अपना राज्य चला सकती हूँ, चला सकते हो, सुत पुत्र चाहिए, आप्त परिवार चाहिए, ये सब एक्सपैंड होता जाता है भौतिक जगत को एक्सपैंड करने वाले, ये वर्किंग हार्ड। इसमें आजकल क्या कहते हैं, लोगों को बकरा बनाने के लिए लोगों के अंदर काम वासना को उत्पन्न करा देते हैं, कामुक बना देते हैं। इसलिए आप देखिए आजकल एडवर्टाइजमेंट में, जैसे कोई चित्र होता है, चलचित्र होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, उसके अंदर एक गाड़ी को बेचना है तो उस गाड़ी के बाजू में एक स्त्री को खड़ा कर देते हैं। वो गाड़ी का इंजन और उस स्त्री के बीच में कोई संबंध नहीं है, वो कितना एवरेज देता है वो सब इंजीनियरिंग का बात है, लेकिन उसके बाजू में स्त्री को क्यों खड़ा किया है। लेकिन लोगों के मन में ऐसा डाल देता है, अगर तुम ऐसा गाड़ी खड़ोगे ना तो ऐसा स्त्री आपको मिल जाएगी, तब ये बकरा बन जाता है, अच्छा मैं ये गाड़ी खरीदूंगा ताकि मुझे ऐसा मिल जाएगा। तो इससे जनस्य मोहो यम अहम ममेति, ये मोहित करने वाला है। अत्यंत में अगर देखा जाए, ठीक है आप कोई शैम्पू का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो ठीक है स्त्री का, लेकिन कार को उसके साथ क्या संबंध है? आपको इंजन दिखाना चाहिए, वो सब दिखाना चाहिए ताकि वो कार बहुत अच्छा है आप खरीद सकते हो। नहीं, कार को खरीदना नहीं, उनको किसको खरीदना था, किसको लेना था, उसके बाजू में जो स्त्री जिसको उनके मन में कल्पना डाल दिया, तो ऐसा स्त्री को प्राप्त करोगे अगर ये गाड़ी खरीदोगे, ऐसी भावना आपको एडवर्टाइजमेंट में डाल देते, इसलिए वो खरीदता जाके। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि मुझे तो ऐसा स्त्री नहीं मिला, कोई और मिला, और मिला भी तो मैं उसका ड्राइवर बन गया। जनस्य मोह अहम ममेति। तो ये पूरा दुनिया जो बना हुआ है, ये हरेक पुरुष को बकरा बनाने के लिए बना हुआ है। जो पुरुष ये समझ लेता है कि मैं बकरा बन रहा हूं, उसका उद्धार हो जाता है। लेकिन वो जो सोचता है कि मैं बहुत अच्छा भी कमाई कर रहा हूं, बहुत अच्छा हो रहा है, तो वो और बकरा बनेगा, और बकरा बनेगा। बाद में अगर वो भक्ति करेगा तो ययाति जैसा बोलना शुरू करेगा। इसलिए ययाति जैसा आप पछताने से पहले ही बच जाओ, नहीं तो कम से कम ययाति जैसे तो बनो। दैट इज द स्क्रिप्चर। ये भागवत का उपदेश ये है। ययाति का प्रसंग इधर क्यों है नवे स्कंद में? नवे स्कंद में इसलिए ये उपदेश है क्योंकि जो लोग जिसके पास मौका है वो ययाति नहीं बने, जिसके पास मौका नहीं है कम से कम ययाति बने, नहीं तो क्या होगा, वो बकरा। ये तीन ही ऑप्शन है, एक बच जाओ, दूसरा पछताओ, नहीं तो मर जाओ, डाई। देर ओनली थ्री ऑप्शन इन दिस वर्ल्ड। अगर मैं फंस गया इस भौतिक जगत में, पछताओ। वो पछताने से, भक्ति करते हुए पछताने से उद्धार हो जाएगा। पछताना जो है हमारा जो पाप वासनाओं को मारने वाला चीज है, पछताने से हमारे अंदर जो पाप की प्रवृत्ति है वो खत्म होता है, क्योंकि पछताना भक्ति का अंग है। पछताना जो है भगवान का शक्ति प्राप्त करने का एक अंग है, इसलिए उससे हमारे अंदर पाप की प्रवृत्ति नष्ट हो जाता है। मान लो कोई व्यक्ति पछता रहा है, उसको देख के आप बच जाओ, तो ये दो बहुत अच्छी बात है। और ये दोनों नहीं करता है तो निश्चित रूप में बकरा है। एवरीबडी इज बिटफुल। कोई व्यक्ति सोच सकता है या बहुत बुद्धिमान हो, मैं दूसरों को मूर्ख बनाया कि मैं बहुत धारा धन कमाया, लेकिन ये धन जो है तो आपने जो कमा के रखा है उस धन को किसी और ने आपको मूर्ख बनाया। एक स्त्री ने आपको मूर्ख बना के वो धन को वो ले लेती, या कोई और आपको मूर्ख बना के वो धन को ले लेता है। तो इससे में पूरा जगत में क्या हो रहा है, एक दूसरे को मूर्ख बना रहे हैं बस। एवरीबडी इज फूलिंग ईच अदर। बकरा का अर्थ यही है, मैंने उसको बकरा बनाया, किसी और ने इसको बकरा बनाया, तो एक दूसरे को बकरा बनाने में लगे हुए हैं। इसलिए बकरा नहीं बनना है हमको, क्या बनना है, शेर बनना है, सिंह बनना है। श्री भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने कहा, भक्तिसिद्धांत ठाकुर के विषय में कहा जाता है कि वो सिंह गुरु है। जब वो गर्जना करते हैं, जो बकरे जैसे सियार जैसे जो जानवर है वो सब भाग जाते हैं। जो इसलिए हमको भगवान का शरण लेते हुए वी हैव टू बिकम लायन, वी हैव टू बिकम लायन, रोर लाइक ए लायन। इस जगत में बहुत सारे बड़े बड़े लोग सोचते हैं कि मैं शेर जैसा हूं, मैं शक्तिशाली हूं, लेकिन जब घर जाते हैं तो बकरा बन जाते हैं। बहुत सारे आज देखिए कितने भी युद्ध हुए हैं, सारे युद्ध के पीछे किसी ना किसी की स्त्री का हाथ है। उसके लिए सब लोग युद्ध कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं ताकि मुझे स्त्री मिले। उसके लिए कितना सेना लोग मर जाते हैं, ये इतिहास उसका सबूत है। ये सारा जगत चल रहा है, ये जगत को गति मतलब जो चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्योंकि इसके पीछे एक स्त्री का हाथ है। इसलिए आजकल लोग कहते हैं बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ए सक्सेसफुल वुमन, है कि नहीं? सही बात है। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल बकरा देयर इज ए सक्सेसफुल बकरी। इसलिए इतना काम करता है, क्यों काम करना पड़ता है, व्हाई यू हैव टू वर्क। बचपन में एक मेरे कुछ दूर से रिश्ता आके पूछे थे, वो कहे कि तुमको ये काम कर सकते हो, ये काम कर सकते हो, बहुत बता रहे। मैंने उनसे पूछा क्यों काम करना चाहिए, उसको हार्ट अटैक जैसा आई है, क्या प्रश्न पूछ रहे हो तुम? क्या प्रश्न पूछना चाहिए? मैं मेरे मन में ये विचार कि वाई वी हैव टू वर्क, क्यों काम करना चाहिए? अच्छा सा आराम, चलो जो मिला उससे संतुष्ट रहो। नहीं, जैसे किसी के मन में या जीवन में एक स्त्री प्रवेश करती है तो ये जो भावना है जो मिला उसे संतुष्ट रहना, वो भावना उसके जीवन से निकल जाती है। उसको he has to work hard, he has to become a donkey, he has to work become a... तो ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है कि ययाति जो है वो पछता रहा है, बेटर लेट देन नेवर, पछताओ नहीं, पछताए हुए व्यक्ति को देखे सीखो। तो वैसे तो पूरा अनेकों अनेकों चीजें इसके बारे में कहा जा सकता है, अंततः ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, ये जो काम करने की जो प्रवृत्ति है उसे बच जाना चाहिए। ये मत सोचिए कि मैं काम नहीं करूंगा तो मैं जीऊंगा कैसे। हाथी कोई काम नहीं करता है, लेकिन उसको 100 किलो ब्रेकफास्ट के लिए मिल जाता है, है कि नहीं? आपने देखा कोई और कुत्ता है वो भी काम करता है, ऐसे घूमता रहता है, मिल जाता है उसको, सुअर को मिल जाता है, कुत्ते को मिल जाता है, हाथी को मिल जाता है, वैसे ही हमको भी मिल जाता है। वैसे एक बार बताया जाए, चाहे कोई भी हो उसको काम करने की जरूरत नहीं है, ही डजंट हैव टू वर्क। लेकिन लोगों के मन में ऐसा भूत बैठ गया है, काम नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा। अभी देखिए गांव में, पहले जमाने की बात है, जब मान लो किसी का लड़के का विवाह भी हो गया, वो घर में पड़ा रहता है, ज्यादा काम नहीं करता है। उसको माता पिता उसको डांट, काम करो, तुम्हें देखते हैं, उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी डालने के लिए प्रयास करते हैं, तो बाद में कुछ करना शुरू करता है। लेकिन वैसे अगर नहीं भी करेगा तो भी इतने लोगों का जीवन निकल जाता है। मैं जानता हूं, मेरे पड़ोस में कोई रहते थे गांव में, तो वो दिन भर बैठे रहते थे, कुछ नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उनका जीवन निकला। सब लोगों को डांटते थे, लेकिन फिर भी उनके मन में ऐसा था कि आपको जो करना करो, मैं काम नहीं करूंगा, आपको मुझे खाना दो नहीं दो कुछ चलेगा, लेकिन हाँ काम नहीं करूंगा। लेकिन उनको पूरा जीवन निकल गया, क्योंकि काम करने के पीछे क्या है, एक ही चीज है, वो है काम वासना। नो बडी इन दिस वर्ल्ड हैज टू वर्क, उसको एक ही काम करना है, वो है भजन। इसलिए लोग बोलते हैं ना, वर्क इज वर्शिप। क्यों? वर्क इज वर्शिप का अर्थ क्या है कि काम करना ही आपका पूजा है। लेकिन हमारा दूसरा स्लोगन, वर्शिप इज द ओनली वर्क, ठीक उल्टा है। हमारा एक ही काम है, भगवान का भजन कर रहे, एक ही काम, काम ही भजन है बोलते हैं, लेकिन हमारा भजन ही एकमात्र काम है, देयर इज नो अदर एक्टिविटी। इसलिए आजकल के कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या करते हैं, नौकरी में लोगों के मन में इच्छा डाल देते हैं, देखो तुमको ये देंगे वो देंगे, दिलाते भी हैं उनको, कभी कभी उधर लेके जाते हैं कहीं, उसको बहुत सारा काम इच्छाओं को पूरा भरा देते हैं। तो जितना उनके मन में कामना भरती है उतना वो काम करेगा, उतना वो कौकर बन जाएगा। इसलिए ये पूरा जगत जो है इसी के ऊपर चल रहा है, लोगों को शोषण किया जा रहा है, लोगों के अंदर काम प्रवृत्ति को बढ़ा के शोषण किया जा रहा है। क्योंकि अगर काम नहीं करेगा तो कैसे उससे फायदा निकाल सकते हैं, इसलिए उनके मन में काम वासना को बढ़ाया जा रहा है। तो अभी इधर इसके विषय में थोड़ा सा विराम देते हैं, और आगे आज निम्बार श्रीपाद निम्बारक आचार्य का आविर्भाव दिवस है। आपको मालूम है चार संप्रदाय है, ब्रह्म रुद्र श्री कुमार, तो ये कुमार संप्रदाय के आचार्य हैं निम्बारक आचार्य। जैसे हमारा ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य मध्वाचार्य हैं, रामानुजाचार्य जो है श्री संप्रदाय के हैं, और विष्णु स्वामी जो है वो रुद्र संप्रदाय के आचार्य हैं। निम्बारक आचार्य किसके हैं? कुमार संप्रदाय। कुमार तो जानते हो कौन है, चार कुमार। चार कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सबसे पहला ब्रह्मा जी ने सोचा कि सृष्टि तो कर दिया है, अभी जनसंख्या को बढ़ाना है, तो उनकी मन से चार पुत्रों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी का मन तो पूरा वेद से भरा हुआ है, तो ज्ञान शक्ति के आवेश अवतार चार कुमार प्रकट हुए। जैसे चार कुमार प्रकट हुए, छोटे से बच्चे से ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों आप शादी करो, विवाह करो और बच्चों को पैदा करो। तो चार कुमारों ने कहा हम नहीं करेंगे, तो इस जगत में ब्रह्मा जी का पहला सृष्टि में ही यही हुआ। जब बच्चे माता पिता का बात नहीं सुनते, ये सोचना चाहिए कि ब्रह्मा जी को यही तकलीफ था। सबसे पहला प्रॉब्लम जो है ब्रह्मा जगत में यही था, बच्चे माता पिता का बात नहीं सुने। ये ब्रह्मा जी को ऐसा तकलीफ है तो आपको होना तो स्वाभाविक है। तो ब्रह्मा जी बहुत क्रोध हो गए, मेरे बात नहीं सुनते हो तो। लेकिन उनको क्रोध आया, साथ में ब्रह्मा जी को ये भी मालूम था ये जो मना कर रहे बहुत अच्छा भी कर रहे, लेकिन उनको मालूम था ये अच्छा भी कर रहे और साथ साथ में क्रोध भी था, मेरी बात नहीं सुन रहे। इसलिए क्रोध को दबा के रखा ब्रह्मा जी ने। तो वो क्रोध का मूर्तिमान स्वरूप रुद्र प्रकट हुए, रोते रोते प्रकट हुए। ब्रह्मा जी मैं क्या करूं? तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो ये तो चार बदमाश हो गए, ये तो काम के नहीं रहे मेरे, उनको भजन करने दो, तुम उत्पत्ति करो, मैं थोड़ा सा आता हूं कुछ समय में। तो रुद्र शिव जी अपना उत्पत्ति करना शुरू किए। तो ब्रह्मा जी को थोड़ा ध्यान लगा रहे थे, भजन कर रहे थे, कुछ आवाज आया, देखा पूरा संसार में उत्पात मचा हुआ है भूत प्रेत गणों का। शिव जी ने इतने सारे भूत प्रेतों को, तो ब्रह्मा जी को आ रहे रही रही मैंने गलती कर दी। शिव जी को बोला नहीं रुको रुको रुको, बस बस यही खत्म करो, नहीं तो पूरा जो मैं शिष्य किया उसको बर्बाद कर देंगे। तो शिव जी को ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सब को लेके जाओ एक शांत जगह जाओ, उधर उनको संभाल लेना, बाकी सब जगह छोड़ देना। तो आप देखिए कि कौन सा अच्छा है कि शिव जी जैसा उत्पात मचाने वाले बच्चों को पैदा करना या उसे दूर रहना। इसलिए भक्तों ठाकुर ने कहा, किसने पूछा बक्सचंद ठाकुर से आपने विवाह क्यों नहीं किया? तो ने कहा अगर मैं अपने जितने भी संतान है सारे पुत्रों को अगर भक्त बनाने की मेरे पास शक्ति होती तो मैं 100 पुत्रों को प्रसन्न करता, लेकिन मेरे पास वो नहीं है। मैं क्या करूं, इससे मैं शिष्य बना रहा हूं। अब देखिए कितना मुश्किल है पुत्रों को भक्त बनाना। श्रीलक्ष्मण ठाकुर ने कहा कि अगर विवाह करके घर पुत्रों को संभालना है वो तभी करो जब आप उन सबको भक्ति में लगा सकते हो, नहीं तो मत करो, नहीं तो शिवजी जैसा हो जाएगा हालत, उत्पात मचाने वाले संतान होंगे और आपको उत्पात आपको भी खा जाएंगे, बर्बाद कर देंगे। तो ब्रह्मा जी को आके मैनेज करना पड़े, शांत रहो, इसको काउंसलिंग बोला जाता है। मतलब क्या है काउंसलिंग, मतलब क्या घर में खड़ा हुआ तो सबको शांत कराना, यही तो काउंसलिंग है। तो एनीहाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये चार कुमार, ये चार कुमार के संप्रदाय अति महत्वपूर्ण संप्रदाय, चार वैष्णव संप्रदाय में, क्योंकि ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय जो गौड़ीय संप्रदाय है उसके लिए अगर सबसे नजदीकी सिद्धांत है चार संप्रदायों में या चार सिद्धांतों में सबसे नजदीकी अगर कुछ है तो ये निम्बारक संप्रदाय है या चार कुमार कुमार संप्रदाय है। जैसे हमारा सिद्धांत का नाम क्या है, अचिंत्य भेद अभेद, क्या है अभेद भेद है भेदाभेद अचिंत्य भेद अभेद। तो निम्बारकाचार्य का सिद्धांत जो है द्वैताद्वैत, क्या है रामानुजाचार्य का क्या है विशिष्टाद्वैत, मध्वाचार्य का क्या है श्रीपाद मध्वाचार्य का द्वैत, और विष्णु स्वामी केवलाद्वैत, केवलाद्वैत विशिष्टाद्वैत द्वैत द्वैताद्वैत, ये चार संप्रदाय चार आचार्य चार सिद्धांत। तो निम्बारक आचार्य का सिद्धांत क्या है द्वैताद्वैत, केवलाद्वैताद्वैत है। तो द्वैताद्वैत भेद अभेद दोनों के बीच में थोड़ा गहराई संबंध है कि नहीं, नजदीक है कि नहीं, तो अंतर क्या है वो बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत और निम्बारक आचार्य के सिद्धांत में बहुत नजदीक है, इज द क्लोजेस्ट philosophy to our philosophy among the four sampradayas is this Nimbarka. तो निम्बारक आचार्य कौन है? उनका जन्म हुआ गोदावरी के तट में, दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में हुआ, और उनका जन्म होते ही बड़े प्रकांड विद्वान थे, अनेकों अनेकों शास्त्रों को अध्ययन किए, और उनका गुरुकुल के शिक्षा के बाद वो प्रवेश वो आए बचपन में 10-12 साल के अंतर्गत ही वो पहुँच गए वृंदावन। गोवर्धन के पास में एक गांव है जिसका नाम है निम्बा ग्राम, कभी मौका मिले तो जाइएगा, वही बहुत सुंदर गांव है, निम्बाग्राम, तो निम्बाग्राम में वो केवल 12-14 साल के अंदर ही इतने प्रचंड विद्वान और इतना महान भक्तिवान हुए थे, तो बहुत सारे लोग उनके पास आके शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। इतना ही नहीं, बहुत सारे अन्य मत वाले आके उनके साथ वाद करने बैठे थे। तो एक बार एक जैन साधु आया था, उन्होंने वाद विवाद करने बैठे तो जैन साधु को उन्होंने 12-14 साल का लड़के ने उन्होंने परास्त कर दिया जैन सिद्धांत को। तो जैसे परास्त किया तो जैन वो बड़े दुखी होकर जा रहे थे। तो वैसे तो वो सन्यासी थे, विरक्त थे, जैन साधु थे, तो उन्होंने बच्चे ने कहा आप रुकिए, मैं आपको प्रसाद देता हूं। तो असल में जैन साधु कोई और नहीं थे, ब्रह्मा जी के अवतार थे। सारे जगत को ये घोषणा करने के लिए ब्रह्मा जी आए थे, ये साधारण नहीं निम्बारक आचार्य कौन है, उसका स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए ब्रह्मा जी स्वयं आए थे। तभी छोटा सा बालक घर में गए, माँ को कहा कि देखो एक साधु आए, उनको भोजन खिलाना है। तो उन्होंने कहा, माँ ने कहा कि मैं तो सब जो भी है पकवान है हम ग्रहण कर लिए, जो भी बच्चा कुछ आता हो हम साधु को दे नहीं सके, जो बचा हुआ चीज देना जो है वो उचित नहीं है, और मुझे फिर वापस पकाना पड़ेगा। तो निम्बारक आचार्य ने कहा आप वापस पकाओ तो टाइम लगेगा। तो साधु को बोले गए आप जरा रुकिए। साधु ने कहा मैं सूर्यास्त के बाद नहीं लेता, क्योंकि जैन लोग सूर्यास्त के बाद नहीं लेते हैं, वैसे सन्यासी भी नहीं लेते सूर्यास्त के बाद। तो माँ को आके कहा निम्बारक आचार्य ने कि आप जल्दी पकाना, सूर्यास्त के बाद वो ग्रहण नहीं करेंगे। माने से ठीक है, उन्होंने पकाया। जैसे कि साधु है पहली बार आए तो उनको एक आइटम खिलाना उचित नहीं, दूसरा आइटम बनाए, दो ही तो है ना, तीन आइटम बनाए। वैसे बनाते बनाते क्या हुआ, सूर्यास्त हो गया। तो निम्बारक आचार्य पूरा प्लेट लेके गए साधु के पास, आप लीजिए। उन्होंने कहा अभी मेरा जपने का टाइम है, संध्या का टाइम है, अभी भोजन नहीं ग्रहण करूंगा, भगवान की ऐसी इच्छा होगी तो मैं आज भूखा ही रह जाऊंगा तो मैं नहीं ग्रहण करूंगा। ये नीम वृक्ष के नीचे बैठे थे साधु, निम्बारक आचार्य प्लेट लेके आए आप ग्रहण कीजिए। छोटा सा बालक है, 12-13 साल का बालक है। तब उन्होंने ग्रहण नहीं किया, तब निम्बारक आचार्य ने किया, नहीं यार संध्या नहीं हुई, अब देखिए, नहीं संध्या हो गई है, देखो नीम का वृक्ष देखिए पश्चिम की ओर देखिए। तो साधु पीछे मुड़ के देखे, नीम के जो वृक्ष के पीछे सूर्य दिखाई पड़ा, अभी संध्या नहीं हुई। तो ये जो साधु सोचने लगे, मैं तो देखा हूं सूर्यास्त होते हुए, क्या कौन सा मोह है, और एक सूर्य दिखाई पड़ रहा है इधर। तो बालक ने कहा देखो अभी सूर्यास्त नहीं हुआ, वही खाओ। तो साधु को विवश होकर ग्रहण करना पड़ा, ग्रहण करने के बाद वो सूर्य गायब हो गया। तो अस्तित्व में वो सूर्य नहीं था, वो सुदर्शन था, क्योंकि निम्बारक आचार्य कोई और नहीं है, वो सुदर्शन के अवतार है, इज इनकार्नेशन ऑफ सुदर्शन। चानाचार्य कौन है मालूम होना जरूरी है, निम्बारक आचार्य सुदर्शन के अवतार है, मध्वाचार्य जो है वो वायु के अवतार है, रामानुजाचार्य जो है अनंत देव के जो भगवान को गुणगान करने की शक्ति के शक्ताविश अवतार है, और जो विश्व स्वामी या वल्लभाचार्य जो है वो अनंत देव के मुखारविंद के प्रकाश का शक्ताविश अवतार है, जिससे चार आचार्य की विषय में थोड़ा बहुत जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो संप्रदाय चार आचार्यों के सिद्धांत के जो चार खंभ है उसके ऊपर खड़ा हुआ है। तो निम्बारक आचार्य का ये थोड़ा स्टोरी, इससे उनका नाम पड़ा निम्ब अर्खा, निम्ब का अर्क है निम्ब वृक्ष, नीम वृक्ष, अर्क का अर्थ है सूर्य, जिसने निम्ब वृक्ष के पीछे सूर्य को दर्शन कराया, इससे उनका नाम क्या पड़ा, निम्ब अर्खा। तो वैसे उनके अनेकों स्टोरीज हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण स्टोरी, जो एक बार निम्बारक आचार्य गए थे नवद्वीप धाम में बिलपुकुर, वो नवद्वीप में बेलपुकरिया ऐसा कुछ एक जगह है जो बिल्व क्षेत्र कहा जाता है, ओरिजिनली उसका नाम बिल्व क्षेत्र था। उधर शिवजी प्रवचन दे रहे थे, तो उस समय एक ब्राह्मण बैठा था यानी निम्बारक आचार्य, तो सुन रहे थे। शिवजी ने कहा उस ब्राह्मण को, निम्बारक आचार्य को, ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तुम्हारे जो चार गुरु गुरु हैं वो इधर नित्य रूप में गौर नाम को जप करते, क्योंकि नवद्वीप धाम है, नवद्वीप धाम में चैतन्य महाप्रभु एक गुप्त अवतार है, गुप्त रूप में अनेकों लीलाएं करते हैं और नित्य रूप में ये जो चार कुमार हैं वह उधर भजन कर रहे हैं। आप उनको उपासना करो, उनके सामने प्रकट होंगे और आपको इधर ज्ञान प्राप्त होगा, आपको इधर दीक्षा ग्रहण प्राप्त होगा करके शिव जी उधर से बोल के गायब हो गए। तब निम्बार्क आचार्य बहुत मेहनत करके ढूंढ ढूंढ उनके एक जंगलों में जाके रोने लगे, कृष्ण का नाम उच्चारण करने लगे और गुरु के विरह में तीव्र वेदना व्यक्त किए, मुझे ज्ञान प्रकाशित कीजिए, अब कहाँ हूँ, अब कहाँ हूँ। तब चार कुमार प्रकट हुए, तब चार कुमारों ने निम्बार्क आचार्य को एक ग्रंथ प्रदान किया जिसका नाम है कुमार संहिता। उन्होंने कहा कि कुमार संहिता के अनुसार आप भजन करो और मैं हम आपको एक मंत्र देंगे, गोपाल मंत्र देंगे। और भी उन्होंने और दो तीन मंत्र दिया, गुप्त मंत्र हैं वो देके उन्होंने कहा कि हम आपको एक विग्रह देंगे, ये स्पेशल विग्रह है। अस्तित्व शालिग्राम था, वो शालिग्राम शिला उसका नाम है राधा सर्वेश्वर शालिग्राम। अस्तित्व शालिग्राम शिला जो है विश्व तत्व का होता है, लेकिन ये जो शालिग्राम शिला है वो विशेष है, वो सारे शालिग्राम को शोध माना जाता है, राधा सर्वेश्वर शालिग्राम शिला। हमारा बड़ा सौभाग्य रहा कि मंदिर के कंस्ट्रक्शन के विषय में बार बार हम मकराना जाया करते थे, तो पिछले एक डेढ़ साल से जा रहे मैं और शुभेंदू जा रहे थे, लेकिन रास्ते में जा रहे थे हमेशा एक बोर्ड दिखाई पड़ता था, जगद्गुरु निम्बार्क आचार्य का मुख्य मूल पीठ सरेवाबाद करके एक जगह है, गांव है 10 किलोमीटर दूर है वो, किशनगढ़ से जब मकराना जाएंगे उस रास्ते में पड़ता है। तो बार बार मैं हर्षवर्धन को बोलता कि हम जाके देखेंगे, लेकिन इस बार जब गए थे मेरे पास टाइम था, हम गए, थोड़ा आश्चर्य की बात है वो जो विग्रह है, जिस विग्रह की बात मैं कर रहा हूँ, जिस शालिग्राम शिला जो चार कुमारों ने इनको दिया, किनको, निम्बार्क आचार्य को दिया, वो जो शालिग्राम शिला उस जगह उपस्थित है, उधर उनका पूजा होता है, बड़ा सुंदर है। और उनका कहना है कि उस शालिग्राम शिला के ऊपर राधा कृष्ण का सुंदर चिन्ह है जो बहुत गहराई कुछ ही लोगों को दिखाई पड़ता है, तो वो विग्रह को प्रदान किए, प्रदान करके उन्होंने कहा कि आप राधा कृष्ण का नाम उच्चारण करो, मंत्र उच्चारण करो, गोपाल मंत्र को उच्चारण करो और भजन करो। ऐसा करके चार कुमार अव्यक्त हो गए। तो जैसे वक्त हो गए वैसे उपासना करने लगे, करते 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 राधा कृष्ण प्रकट हुए निम्बार्क आचार्य के सामने, वो भाव विभोर होकर उपासना करने लगे। तो राधा कृष्ण ने कहा, तुम इस धाम में हो, तुम्हारे भक्ति को देख के हम बड़े प्रसन्न हैं, इसलिए हम आपको एक विशेष रूप दिखाएंगे। तो राधा और कृष्ण निम्बार्क आचार्य के सामने एक हो गए और क्या रूप धारण किए, चैतन्य महाप्रभु रूप धारण किए और निम्बार्क आचार्य की आंखों से आंसू बह रहे हैं और उन्होंने कहा कि ये जो अद्भुत रूप है आप ऐसे ही रह जाइए, मैं सारा जगत में जाके आपका इस रूप का वर्णन करूंगा। तो निम्बार्क चैतन्य महाप्रभु ने कहा अभी समय है, मैं आपके उसका करूंगा, लेकिन मैं आपको दो बातों को प्रदान करूंगा। एक, राधा कृष्ण जो की उपासना जो है सर्वोच्च उपासना है, और दूसरा, गोपियों की पच्चिन्नों में चलना ये हमारा सिद्धांत है। ये दो सिद्धांत के ऊपर तुम व्याख्या करो और वेदांत के ऊपर भाष्य की रचना करो। पारिजात सौरभ ऐसा कुछ भाष्य है, मैं भूल गया उसका नाम। तो उन्होंने भाष्य की रचना किया, अनेकों दश श्लोक षोडश श्लोक की अनेकों रचना किया, और ये दो विशिष्ट बातें हैं, क्या है वो, राधा कृष्ण का सर्वोच्च विग्रह के रूप में स्वीकार करना और गोपियों के पच्चिन्न में चलना, गोपियों की व्रज भक्ति व्रजवधु वर्गेन वा कल्पिता, जैसे इतने महाप्रभु सिद्धांत उसको चित्त महाप्रभु इनको प्रदान किया। बाद निम्बार्क आचार्य अनेकों ग्रंथों की रचना किए और निम्बार्क संप्रदाय में जो उपासना होता है परम वैराग्य को स्वीकार करते, वो इतना वैरागी होते हैं उधर के उनके सन्यासीगण, और उनको देखने से ऐसा लगता है कि अरे ये तो चोर है, लेकिन अंदर उनके अंदर वैराग्य और राधा कृष्ण व्रजभक्ति जो है बहुत उत्कृष्ट भाव में रहता है। आप जब वृंदावन जाओगे जहाँ जी ये श्री जी दिखाई पड़ता है, वो श्री जी वाले कौन है, निम्बार्क संप्रदाय के हैं, निम्बार्क संप्रदाय। तब चैतन्य महाप्रभु थे कि निम्बार्क आचार्य, उन्होंने अपना काम किया। जो जो मूल जो पीठ है निम्बार्क आचार्य का, तो वो राजस्थान में सलेमाबाद में है। मूल रूप में निम्बादित्य ग्राम में था, लेकिन उधर के जो ब्रह्मा जी का कौन सा है क्षेत्र, पुष्कर, पुष्कर पुष्कर क्षेत्र में बहुत सारे साधुजन थे, वो सब लोग आए थे इधर वृंदावन में। आके उधर एक बड़े संत थे, उनसे प्रार्थना किया, हमको बहुत परेशान कर रहे इधर मुसलमान लोग, आप आइए। तब निम्बार्क आचार्य का संप्रदाय का जो हेडक्वार्टर है वो गोवर्धन से लेके या जो निम्बादित्य ग्राम है उधर से उनका शिफ्ट हुआ सलेमाबाद में। उधर अभी भी वो विग्रह उपस्थित है। ये श्रीपाद निम्बार्क आचार्य के विषय में है। तुलसी शालिग्राम विवाह है। वैसे तुलसी शालिग्राम विवाह जो है वो वैकुंठ का लीला है, भगवान वैकुंठ का लीला। तुलसी जो है, तुलसी महारानी जो है, वृंदे देवी के विस्तार है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वृंदा देवी का विवाह शालिग्राम से हुआ, नहीं, तुलसी देवी का विवाह जो है वो शालिग्राम से हुआ। वृंदा देवी, वृंदे देवी की जय, तुलसी महारानी की जय। भले ही वैसे देखा जाए तो दोनों एक ही स्वरूप है, लेकिन फिर भी व्यक्तित्व के रूप में अंतर है, इसलिए वृंदे देवी तुलसी देवी की जय नहीं, दोनों एक नहीं है, एक है एक तरीके से, एक नहीं भी है। इसलिए वृंदे देवी को अलग से भजन करना है और तुलसी देवी को अलग से प्रणाम करना है। तो ये तुलसी देवी की जो महिमा है और शालिग्राम विष्णु की महिमा है या उनकी जो लीला है, अनेक पुराणों में उसका वर्णन है। आप सबको ये लीला मालूम है, जलंधर से विवाह हुआ था, भगवान ने क्या किया, वो छद्म रूप में आके तुलसी महारानी का जो शीलता है वो भंग किया। तो ये सब लीला शास्त्र वर्णन है, लेकिन मूलतः ये है कि भगवान ये सारा जगत को अलग अलग लीलाओं के द्वारा ये घोषणा करना चाहते हैं, ये स्थापन करना चाहते हैं कि उनकी जो अंतरंगी उनके भक्तों से कितना प्रेम है। तो भगवान जो है वो कोई भी चीज को ग्रहण करेंगे, वो केवल तभी ग्रहण करेंगे जब तुलसी का दल उसके अंदर, तुलसी के बिना भगवान कुछ ग्रहण नहीं करते। इस बात को सारे जगत को स्थापना करने के लिए, सारे जगत में स्थापना करने के लिए भगवान ऐसे ऐसे विराजमान करते हैं। वैसे तुलसी महारानी को जलंधर स्पर्श भी नहीं कर सकता, अभी भी वो जलंधर जगह है पंजाब में, वही है, उसी के नाम पे जलंधर है, वो जल के अंदर रहता था। तो ये लीला का विषय में, ये तुलसी शालिग्राम विवाह है, ये एक ही विवाह है जिसके अंदर सन्यासी और ब्रह्मचारी भाग ले सकते हैं, बाकी विवाह में भाग नहीं ले सकते। इसलिए सारे ब्रह्मचारी से निवेदन है आप इधर उपस्थित रहे मंदिर में, क्योंकि उधर हमारे हॉल में और एक विवाह चल रहा है उधर। श्री कृष्ण रथ यात्रा है और एक रासलीला होता है आज भगवान, इसने ऑटम सीजन रासलीला, एक तो शारदीय रस हुआ और एक ये और एक रस है रासलीला है। इसके विषय में तो ज्यादा वर्णन नहीं मिलता है, कुछ ही शास्त्रों में उसका वर्णन है, कभी और इसके बारे में चर्चा करेंगे। तुलसी शालिग्राम विवाह की, श्रीपाद निम्बार्क आचार्य की, श्री कृष्ण रथ यात्रा महोत्सव की, श्रीमद् भागवतम की, श्री प्रभुपाद की जय। वृंदे देवी जो है वृंदावन में निवास है, वृंदे देवी की एक्सटेंशन तुलसी देवी, हाँ पार्टी मैनेजर, मैनेजर है पूरा, कम्युनिकेशन मैनेजर है, ऐसे मैनेजर कौन मारती है वृंदावन, और जो सारे कम्युनिकेशन है सब वृंदे जी, वृंदा कुंड में है, वृंदा कुंड अलग अलग, मतलब वृंदे देवी जो के विस्तार है तुलसी, तुलसी वृंदे देवी के विस्तार है, ये जानो बस। वैकुंठ का लीला, वृंदावन का लीला नहीं है, कार्यक्रम विवाह है।
उदाहरण एक ही है।